नोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयहं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद से अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। लास्ट वीक हमने पुरंजन की स्टोरी कंप्लीट कर ली थी, बट उस समय चूंकि स्टोरी कठिन भी है तो मैंने सोचा था एक बार इसको थोड़ा सा फिर से डिस्कस करेंगे जिससे कि ज्यादा क्लियर हो सके। तो ये पुरंजन की जो स्टोरी है ओरिजिनली नारद मुनि की शिक्षाएं हैं राजा प्राचीन बरहिशत के लिए। नारद मुनि ने जो शिक्षाएं प्रदान की वो डायरेक्टली कोई शिक्षा बताने की बजाय राजा प्राचीन बरही को एक स्टोरी नारद मुनि ने बनाया है। इसको बोला जाता है इंग्लिश में एलेगोरिकल स्टोरी, कि एक स्टोरी के द्वारा चीजों को समझाना। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है पुरंजन नाम से। चूंकि नारद मुनि ने जब ये पूरी स्टोरी सुनाई तो ये स्टोरी सुन के राजा प्राचीन बरहिशत को एग्जैक्टली समझ में नहीं आई कि वो क्या बोलना चाहते हैं। इसलिए प्राचीन बरहिशत ने पूछा कि हे मुनि, आपने जो ये स्टोरी सुनाई है उसको मैं पूरी तरह से समझ नहीं पाया, क्योंकि हम जैसे लोग जो कि कर्म कांड में बहुत ज्यादा फंसे हुए हैं उनको इन सब निर्देशों को समझना बहुत मुश्किल है। फिर नारद मुनि ने समझाया कि ये स्टोरी मैंने आपके लिए ही बनाई है, आपको आपको शिक्षा देने के लिए ही बनाई है। और इस स्टोरी में पुरंजन जो है, पुर का मतलब होता है पुर को पैलेस भी बोला जाता है, महल, या पुर का बोला जाता है स्थान। और पुरंजन जो है वो आत्मा को डिनोट करता है। पुरंजन जो है वो पुर में रहने वाला, जैसे देह में रहने वाला देही कहलाता है, पुर में रहने वाला पुरंजन आत्मा को ये नाम दिया गया है। और नारद मुनि ने समझाया कि पुरंजन अपने जिस प्रकार से आत्मा अलग अलग शरीरों में भ्रमण करती है अपने कर्मों के आधार पे, उसी प्रकार से ये पुरंजन जो था वो अलग अलग देशों में भ्रमण कर रहा था। और भ्रमण करते करते कई बार हमें एक पैर वाले जीव बनते हैं, मतलब एक पैर, भूतों के एक पैर पाए जाते हैं। भूतों की एक प्रजाति होती है, उसमें एक पैर होते हैं उनके केवल। भूतों की कई प्रजातियां हैं, घोष होता है, फिर पिशाच भी होता है, प्रेत होता है, ब्रह्म राक्षस होता है, दानव होता है, दैत्य होता है, असुर होता है, बहुत सारी प्रजाति है। सबको हम असुर बोल देते हैं, पर उनके बीच में कैटेगरीज हैं बहुत सारी। तो ये इनमें से बहुत सारे जो होते हैं ये वन लेगेड होते हैं। तो आत्मा कभी कभी उस योनि में भी फंसती है, फिर कभी कभी दो पैरों वाले में, फिर कभी तीन पैरों वाले में। तीन पैर किसके होते हैं? सामान्यतः जो व्यक्ति बुढ़ा हो जाता है उसका तीसरा पैर आता है, और जो डंडा जिस छड़ी के द्वारा वो चलता है। चार पैर वाले जानवर, बहुत सारे पैर वाले भी जानवर होते हैं, और कुछ कुछ जानवर होते हैं जो पैर नहीं होते, जैसे सांप है वो घिसट के चलते हैं। तो आत्मा अपने कर्मों के आधार पे अलग अलग शरीरों में जाती रहती है, और इस आत्मा के मित्र भगवान हैं, आत्मा उनको भूल जाती है। हम जो हैं, हमारे मित्र भगवान हमेशा से हैं, परंतु हम भूल जाते हैं कि भगवान हमारे परम मित्र हैं। और जब भी हम इस प्रकृति के तीन गुणों को भोगना चाहते हैं, अपनी इंद्रियों को भोगना चाहते हैं, और उस समय नेचर के द्वारा मनुष्य का शरीर दिया जाता है, क्योंकि मनुष्य के शरीर में भोग के साधन सबसे आसानी से अनुकूल है। परंतु साथ साथ मनुष्य के शरीर में यह जिम्मेदारी भी होती है कि वो आध्यात्मिकता के सिद्धांतों का पालन करे। तो पुरंजन अलग अलग योनि से घूमते घूमते उसको मनुष्य का शरीर मिलता है। और इसके बाद जो जब पुरंजन घूम रहे थे तो वो भारत देश में आते हैं। भारत देश में मतलब भारत देश में मनुष्य का शरीर उस आत्मा को मिलता है। और मनुष्य के शरीर में आत्मा के डोमिनेशन में कौन होती है? बुद्धि। तो जब भारतवर्ष में वो आत्मा आई तो उसको एक स्त्री मिलती है। उस स्त्री का नाम होता है प्रमदा। प्रमदा मतलब भौतिक बुद्धि। क्योंकि जब कोई व्यक्ति भौतिक बुद्धि का शरण लेता है दैट मीन्स वो अपने आप को शरीर समझ लेता है। और अपने आप को शरीर समझने के बाद वो व्यक्ति फिर भोग करने की इच्छा करता है। तो जो स्त्री जो पुरंजन को मिली थी वो बुद्धि की सूचक है। और उस स्त्री की हमने देखा था कि 10 10 उसके मित्र थे। ये 10 मित्र हमारी 10 इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां। कर्म इंद्रिया मतलब जिससे हम कर्म करते हैं, ज्ञान इंद्रिया मतलब जिससे ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो ये 10 इंद्रियां हैं। और इन 10 इंद्रियों की फिर हमने देखा था कि इनके कई कई सौ हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इनके सर्वेंट भी थे। दैट मीन्स एक एक इंद्रिय के भोग करने के बहुत सारे वो होते हैं, इच्छाएं होती हैं। हर इंद्रिय से हम अनलिमिटेड इच्छाओं से भोग करते हैं। अच्छा अच्छा भोजन खाना चाहते हैं हम, जनन इंद्रियों का सुख भोगना चाहते हैं, अलग अलग सुख प्राप्त करना चाहते हैं। तो हर इंद्रिय का अपना अलग अलग सुख होता है। हज इसलिए जो इस रानी के जो 10 उसके जो मित्र हैं या नौकर हैं उन सभी की 100 100 पत्नियां हैं। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति के भोग करने की बहुत इच्छाएं होती है, हंड्रेड्स ऑफ डिजायर्स होती हैं। और उस स्त्री की रक्षा करने के लिए एक सांप भी रहता है। ये सांप जो है ये 5 हवाएं जो हमारे शरीर में रहती हैं, प्राण अपान वायान उदान समान, ये 5 हवाएं जो हमारे शरीर में रहती हैं ये वो सांप के समान है। और आत्मा जो है इन 5 हवाओं के बीच में ही निवास करती है। इसके बाद जो 11 11वां कमांडर होता है मन। मन सभी इंद्रियों का स्वामी होता है। 10 के 10 इंद्रियों का स्वामी मन होता है। और ये मन बुद्धि के गाइडेंस में होता है और बुद्धि आत्मा के नियंत्रण में होती है। इसीलिए वो स्त्री जो है बुद्धि के द्वारा डिनोट की गई है और पुरंजन जो है वो आत्मा के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। और माइंड को ट्रेनिंग दिया जा सकता है। माइंड कभी ट्रेनिंग के द्वारा कभी शत्रु भी होता है, कभी मित्र भी होता है। अगर किसी व्यक्ति को कोई अच्छा मैनेजर मिल जाए तो उसका बिजनेस अच्छे से चलता है, परंतु अगर मैनेजर चोर है तो उसका बिजनेस खत्म हो जाएगा। और ये लोग कहाँ पे रहते हैं? पांचाल देश में रहते हैं। पांचाल एक ऐसा ऐसे एटमोस्फियर को डिनोट करता है जहां पे इन इंद्रियों को संतुष्ट किया जाता है। और इस पांचाल के अंदर मनुष्य शरीर प्राप्त किया जाता है। फिर नारद मुनि आगे समझा रहे हैं कि जो हमने देखा था कि उसके सिटी में 9 द्वार थे, तो वो 9 द्वार वास्तविकता में हमारे शरीर के 9 द्वार हैं। और हमने देखा भी था कि वो किस किस व्यक्ति के साथ इन 9 द्वारों में जाता है, अलग अलग डिस्क्रिप्शन हमने देखा था। तो नारद मुनि बताते हैं कि किस प्रकार से आत्मा 9 द्वारों से जाता है जिससे कि वो भौतिक संसार को भोग कर सके। ये जो 9 द्वार से जब हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कि राजा इन 9 द्वारों से अपने मित्र के साथ जाता था, दैट मीन्स आत्मा शरीर के उन 9 इंद्रियां जो 9 द्वार हैं उन द्वारों से आत्मा अलग अलग संसार में भोग करने के लिए जाती है। और इस शरीर को एक रथ के समान माना जाता है। इस रथ में जो ड्राइवर है वो आत्मा है और जो रथ है वो शरीर है। और रथ की जो लगाम पकड़ने वाला है वो है बुद्धि, मतलब रथ का जो ड्राइवर है वो बुद्धि कहलाता है। और लगाम जो घोड़े की लगाम है वो मन कहलाता है। और घोड़े कहलाते हैं इंद्रियां। तो जैसे अगर हम रथ में बैठे हों, 5 घोड़ों वाले रथ में बैठे हों और घोड़ों की जो लगाम है वो हाथ से छूट जाए तो फिर वो रथ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, कहीं भी जाएगा। इसी तरह से ये हमारा जो शरीर है अगर हम अपनी बुद्धि के द्वारा मन को नियंत्रित नहीं करें तो ये मन जो है वो हमारे शरीर को डिस्ट्रॉय कर देगा बुरी आदतों के कारण। बुद्धि जो है वो ड्राइवर को डिनोट करती है और मन घोड़े की लगाम को डिनोट करता है। तो बुद्धि के द्वारा मन को नियंत्रित करना चाहिए, इसलिए भगवान गीता में लिखते हैं कि जिसने मन को नियंत्रित नहीं किया उसके लिए मन जो है वो शत्रु के समान है, और जिसने मन को नियंत्रित कर लिया वो उसके लिए मन मित्र के समान है। और फिर नारद मुनि ने आगे डिस्क्राइब किया कि किस प्रकार से काल कन्या राजा अपनी पत्नी के साथ भोग करता था, अलग 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 प्रकार से भोग करते थे, और फिर इवेंचुअली ऐसा होता है कि काल कन्या मतलब बुढ़ापा, काल कन्या जरा को भी बोला जाता है, काल कन्या एक्चुअली समय को बताते हैं, टाइम फैक्टर। तो नारद मुनि बताते हैं कि किस प्रकार से काल कन्या जो कि मृत्यु की सिस्टर के रूप में है वो जीव को अटैक करती है। जब भी किसी व्यक्ति का समय पुराना समय आता है, मृत्यु का समय आता है, तो काल कन्या उसको अटैक करती है वृद्धावस्था के साथ। जरा मतलब वृद्धावस्था, काल कन्या मतलब समय, समय उसको अटैक करके उस व्यक्ति को खत्म कर देता है। हमने देखा भी था कि प्रज्वर आया था, प्रज्वर नाम से एक व्यक्ति आया था यवन राजा के साथ में, वो प्रज्वर कहलाता है। मरने के समय जो फीवर आता है, व्यक्ति परेशान हो जाता है, शरीर की गर्मी बढ़ने लगती है, शरीर की हीट बढ़ने लगती है मृत्यु के समय। तो नारद मुनि आगे बता रहे हैं कि हर जीव को इस प्रकार से कुछ इच्छा करने की शक्ति दी गई है, जीव अपने मन से इच्छा कर सकता है, परंतु जब जीव भगवान को भूल जाता है तो वो तीन गुणों के अंडर में आ जाता है। जब कोई जीव भगवान को पूरी तरह से भूल जाता है तो वो तीन गुणों के अंदर में आ जाता है, और जब वो अपने आप को बॉडी से आइडेंटिफाई करता है तो वो तीन गुणों के अंडर में फ्रूटिव काम करता है, और उसके कारण वो अलग अलग जीवों अलग अलग स्थितियों में निवास करता है। तो ऐसे जीव को हम बोला जाता है एक एक भूखे कुत्ते के समान। जब कुत्ते को भूख लगती है तो हर घर में जाता है, कुछ लोग उसको मारते हैं, कुछ लोग उसको खाने भी दे देते हैं। इसी प्रकार से जो व्यक्ति भोग की इच्छा करता है तीन गुणों के अंदर, वो उसी कुत्ते के समान है जो अलग अलग दरवाजे पे जाके खाने के लिए भीख मांगता है। कई बार उसके दुर्भाग्य के कारण उसको मारा जाता है, फिर भगाया जाता है, और कई बार उसको थोड़ा बहुत मिल जाता है। इसी प्रकार से ये आत्मा भी संसार में भोग करने के लिए अलग अलग शरीर में जाती है, किसी शरीर में भोग करती है, एक शरीर के अंदर भी अलग अलग समय पर प्रयास करते हैं। तो समझना चाहिए कि भौतिक भोग करना एक्चुअली कुत्ते के द्वारा भीख मांगे जैसा जाने जैसा है, क्योंकि हर जन्म में हम भोग ही कर रहे थे। पता नहीं कितने जन्म निकल चुके, लाखों जन्म निकल चुके हैं। कोई शास्त्र में उसका नाम आता है टाइम इमेमोरियल, किसी को पता नहीं कि कितने समय निकल चुके हैं, हम इतने समय से भोग कर रहे हैं लगातार। और उसकी तुलना यहाँ पे की गई है कि कोई भूखा कुत्ता अलग अलग घर पे जाके भिक्षा मांगता है, मतलब भीख मांगता है, और कभी उसको मिलता है कभी नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से जब जैसे हम शरीर में जीवित रहने का प्रयास करते हैं, संसार में रहने का प्रयास करते हैं, तो हम बहुत सारे मेथड्स लगाते हैं जिससे कि हमारी जीवन की समस्याएं खत्म हो जाए, परंतु तो इससे और ज्यादा समस्याएं आती हैं। जो लोग समस्याओं को खत्म करने के पीछे भागते रहते हैं उनके जीवन में और समस्याएं आती हैं। जैसे कोई व्यक्ति अगर कोई व्यक्ति कई बार आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति अगर सिर पे कोई बोझ बोझा लेके जाता है, बहुत ज्यादा बर्डन अगर सिर पे लेके जाता है, तो कई बार वो बोझा जब सिर पे ज्यादा ज्यादा वजन हो जाता है तो फिर उसको कंधे पे रख लेता है, परंतु कंधे पे रखने से उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती क्योंकि वो बोझा तो रहता ही है। तो इसी तरह से आदमी इस संसार में रहता है, उसको कभी समस्या होती है, कभी करवट बदल लेता है, कभी दूसरा काम करता है, कभी भाग जाता है, इस तरीके से वो समस्या को टॉलरेट करता है, कभी पूरी तरह से समस्या खत्म नहीं होती इस संसार में। शास्त्रों में इस संसार को जले हुए घर के जैसा बोला जाता है। मान लो अगर किसी घर में आग लगी, हम उस घर के अंदर है, तो सबसे अच्छा प्रयास करना चाहिए कि उस घर खत्म होने के पहले हम उस घर से बाहर आ जाएं। परंतु प्रभुपाद बताते हैं कि ये इतना अच्छा जेल बनाया है कि लोग जलते हुए घर से भी बाहर जाना नहीं चाहते। ये भौतिक संसार जल रहा है एक्चुअली, अनर्थों के कारण, तीन गुणों के कारण पूरा संसार परेशान है, परंतु हम भी खुश हैं, यहीं पे रहना चाहते हैं, भगवान के धाम जाना नहीं चाहते। तो ये पुरंजन की स्थिति है, भौतिक भोग में जो भी व्यक्ति डूबा रहता है उसकी यही स्थिति है। जब कभी हमें अगर कोई कठिन सपना आता है तो हम जाग जाते हैं। इसी तरह से भौतिक संसार में दुख भोगते भोगते हमें वास्तविकता में जागना चाहिए, अपने आप को आत्मा समझना चाहिए और भगवान की सेवा में लगना चाहिए, अपने आप को आध्यात्मिक जीव समझना बहुत आवश्यक है, अपने आप को आत्मा के स्तर पर समझना बहुत आवश्यक है, तभी हम इस संसार से पार पा सकते हैं, तभी हम इस संसार से जीत सकते हैं। इसीलिए जो श्रद्धा पूर्वक भक्त जो होते हैं, जो भक्ति का प्रयास करते हैं, भगवान के बारे में हमेशा सुनते हैं, तो भगवान को सामने भी देखते हैं। बहुत जल्दी ऐसा समय आता है कि भगवान को फेस टू फेस वो देखते हैं। और किस प्रकार से फिर उस पुरंजन की मृत्यु हुई, और पुरंजन फिर अगले शरीर में जाते हैं, और फिर ब्राह्मण भगवान जो है ब्राह्मण के रूप में आते हैं, परमात्मा ब्राह्मण के रूप में आते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि हे राजन, आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि वेदों में जो कर्म कांड लिखा हुआ है वो वास्तविकता में सर्वोत्तम है। वेदों का में कर्म कांड की जो स्थिति है, कर्म करना और यज्ञ करना, ये वेदों में बहुत निचला स्तर है। इसके ऊपर आता है ज्ञान कांड, उसके ऊपर आता है उपासना कांड, फिर भक्ति कांड आता है, भक्ति का सेक्शन आता है। तो नारद मुनि समझा रहे हैं कि वेदों में जो कर्म कांड लिखा हुआ है वो जीवन का अल्टीमेट गोल नहीं है, और बोल रहे हैं कि आपने इतने सारे यज्ञ करे हैं कि पूरी धरती में कुसा घास बिछा हुआ है, आपने इतने यज्ञ कर लिए, पर और उसके बाद इतने यज्ञ करने के बाद आपके अंदर घमंड भी आ गया है, आपने इतने सारे पशुओं को मारा है, तो आपकी मूर्खता के कारण आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि केवल भक्ति करना ही जीवन का लक्ष्य है, और इस संसार से बाहर निकलने का भी लक्ष्य है, और भगवान को संतुष्ट भी केवल भक्ति के द्वारा किया जा सकता है। भगवान ही पूरी तरह से कंट्रोलर है और सभी के सबसे अच्छे मित्र हैं, इसलिए भगवान के चरणों का आश्रय लेना चाहिए। ऐसा बोल के नारद मुनि फिर प्राचीन वरिष्ठ से बोलते हैं कि मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है, इस पुरंजन उपाख्यान में जो भी वस्तु है मैंने आपको समझा दी है, और ये पुरंजन उपाख्यान हमेशा साधु पुरुषों के द्वारा गाया जाता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप भगवान की भक्ति को स्वीकार करें। ऐसा बोल के नारद मुनि वहां से चले जाते हैं। और नारद मुनि साथ जाने पहले एक और स्टोरी बताते हैं कि एक मृग था, डियर, एक जंगल में एक डियर रहता था, और वो हमेशा घास खाता था, उसकी बहुत अच्छी पत्नी भी थी, पूरी फैमिली था। और एक बार क्या हुआ, वो डियर घास खा रहा था, तो घास खाते खाते अपनी पत्नी से बातचीत करते करते वो भूल गया कि पीछे से शेर आता है, टाइगर आता है, और टाइगर एक तरफ से आता है और शिकारी दूसरी तरफ से आता है। इसी तरीके से भौतिकतावादी जो लोग हैं, यद्यपि मृत्यु से वो घिरे रहते हैं, कभी भी उनका मृत्यु हो सकता है, और उनके शत्रु भी हमेशा घिरे रहते हैं, परंतु तब भी वो भोग करना चाहते हैं, संसार में हमेशा परेशान रहते हैं, कभी भी मृत्यु आ सकती है, परंतु तब भी वो इस संसार में केवल भोग करना चाहते हैं, कभी भी भोग की दुनिया से बाहर आना नहीं चाहते। तो भौतिक भौतिक संसार में जो लोग हैं, जो कृष्ण भक्ति नहीं कर रहे हैं, जिनको कृष्ण भक्ति का पता ही नहीं है, उन लोगों का जीवन प्रैक्टिकली यूजलेस होता है, क्योंकि जीवन का कोई गोल उनको नहीं पता होता है, जीवन किस लिए जिया है, जीवन किस लिए मिला है उनको, वो केवल वो भोगते रहते हैं, और भोगते भोगते मर जाते हैं, फिर अगला जन्म प्राप्त करते हैं, फिर भोगते रहते हैं। इसके बाद नारद मुनि बता रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति भक्ति नहीं करता है तो वो केवल स्त्री पुरुष से आकृष्ट हो जाता है, और पुरुष स्त्री से आकृष्ट होते हैं, तो दोनों के बीच में जब स्त्री पुरुष एक दूसरे से आकृष्ट होते हैं शरीर के लेवल पे, तो दोनों एक दूसरे को भोग करना चाहते हैं। जैसे आजकल के समय में मैरिज होती है तो केवल सुंदरता को देखा जाता है, चरित्र नहीं देखा जाता है, लड़की केवल ये देखती है कि लड़का कितना कमाता है, और लड़का केवल ये देखता है कि लड़की कितनी सुंदर है। तो जो स्त्री है वो पुरुष को एटीएम मशीन जैसा समझती है, और पुरुष जो है वो स्त्री को सेक्स मशीन जैसा समझता है। ये भौतिक भोग का बेसिक क्राइटेरिया है। आजकल सारी शादी इसी आधार पर होती है, इसलिए कितनी सारी शादी तलाक में बदल जाती है। वैदिक समय में इस प्रकार से मैरिज नहीं होती थी। तो नारद मुनि वो समझा रहे हैं कि जो व्यक्ति भक्त नहीं है वो इस संसार में इसी प्रकार से क्रियाकलाप करते हैं, और जब जवानी रहती है तब व्यक्ति सुंदर लगता है, लोगों को सुंदरता प्रतीत होती है, परंतु जैसे जैसे व्यक्ति बुढ़ापा होता जाता है, तो जैसे जैसे फूल सूख जाता है उसी प्रकार से व्यक्ति हो जाता है। तो समय हमेशा व्यक्ति को धोखा देता है, जब भी हम इस संसार में भोग करने की इच्छा करते हैं तो समय बहुत जल्दी पास होता है। काम इच्छा, क्रोध, और इस प्रकार से लोग जो केवल अपने जीवन जीने में लगे रहते हैं और भगवान के बारे में कुछ भी नहीं सोचते हैं, उनका जो फल है बहुत खराब होता है, वो मरने के बाद नरक में जाते हैं, और ऐसे ही भगवान के भूलने के कारण वो यमराज के राज में चले जाते हैं, यमराज के राज में जाके दुख भोगते हैं। और ऐसा बोल के नारद मुनि बताते हैं कि हे राजन, आपकी इस प्रकार से ही कंडीशन है, आपने अभी तक अध्यात्म ग्रहण ग्रहण नहीं किया है, आप चाहो तो आपसे परेशान है, परंतु तब भी आप अध्यात्म को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, अभी अपने भौतिक जीवन को छोड़ दो और भगवान का शरण लो। फिर राजा प्राचीन वरिष्ठ ने आंसर किया कि हे ब्राह्मण, आपने जो मुझे बताया मैंने उसको बहुत ध्यान से सुना है, और अभी मैंने सोचा है कि जिन जिन आचार्यों ने मुझे इस क्रियाकांड में लगा था, कर्म कांड में लगा था, वो सब अज्ञानी थे, उन्होंने इस ज्ञान को नहीं जाना था क्योंकि उन्होंने मुझे कभी एक्सप्लेन नहीं किया। आप ही ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझे पहली बार एक्सप्लेन किया ये आध्यात्मिक ज्ञान। तो मेरे जो भी संशय थे अभी तक वैदिक शास्त्रों के बारे में, वो आपके द्वारा पूरी तरह से दूर हो गए हैं। तो अभी मैं समझ सकता हूँ कि इवन बड़े बड़े ऋषि मुनि भी वेदों के उद्देश्य में अनभिज्ञ होते हैं, परंतु आपकी कृपा से आज मुझे वो ज्ञान प्राप्त हुआ। और फिर नारद मुनि उनको और इंस्ट्रक्शन देते हैं कि वास्तविकता में जो बाहर का शरीर है वो केवल कवरिंग के समान है, जैसे कपड़े के ऊपर कवर होता है, उसी तरीके से ये हमारा बाहर का शरीर होता है। और बाहर के शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर होता है, ग्रॉस बॉडी और सटल बॉडी, दो प्रकार के शरीर होते हैं। और ये सूक्ष्म शरीर जो है मन बुद्धि अहंकार से मिलकर बना होता है, और इस प्रेजेंट ग्रॉस बॉडी को छोड़ने के बाद सूक्ष्म शरीर रहता है, और सूक्ष्म शरीर हमें हमारी इच्छाओं के आधार पर अलग अलग दिशाओं में लेके जाता है, अलग अलग जगह पे लेके जाता है। ये सूक्ष्म शरीर का लक्षण होता है। और प्रैक्टिकली हम एक्सपीरियंस भी करते हैं कि हमारे सामने हमने देखा है कि लोग मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, हमारी फैमिली में भी हमने देखा है कि लोग शरीर बदलते रहते हैं, फाइनली वो शरीर खत्म हो जाता है, आत्मा नया शरीर धारण करती है अपने कर्मों के आधार पर, और परमात्मा उसको याद दिलाते हैं कि उसके क्या क्या प्लान थे, और वो प्लान फिर आत्मा पूरा करने का प्रयास करता है। और मन जो है वो मन को बताया जाता है जैसे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क में हम मेमोरी होती है, उसमें डाटा भरा होता है, उसी प्रकार से हमारा मन जो है वो हार्ड डिस्क के समान है, सारा का सारा मेमोरी उस मन के अंदर भरा रहता है कई जन्मों का। इसलिए हम देखते हैं कि हमारे मन में कई बार अलग अलग सपने आते हैं, क्योंकि हमारे पास बैकग्राउंड में बहुत सारा डाटा भरा हुआ है। मन को हार्ड डिस्क जैसा समझा जाता है डाटा उस, और कोई व्यक्ति सोचता है कई बार एकाएक कुछ उसको सपने में दिखाई देता है जो उसने कभी नहीं देखा, तो ये उस चीज का प्रूफ है कि हालांकि उसने इस जीवन में इस चीज को एक्सपीरियंस नहीं किया है, परंतु तब भी ये वस्तु उसने पिछले जीवन में कभी ना कभी एक्सपीरियंस की है, वो सपने के रूप में आती है। क्योंकि हमारा बाहर का जो शरीर है, ग्रॉस बॉडी जो है, वो ग्रॉस बॉडी तो मृत्यु के समय खत्म हो जाता है, परंतु सूक्ष्म शरीर उपस्थित रहता है, सूक्ष्म शरीर के कारण ही हम नए शरीर में जाते हैं। तो इसलिए सूक्ष्म शरीर में जो है मन के अंदर जो विचार है वो कई जन्मों के हैं, लाखों जन्मों के विचार हैं। इसलिए हर व्यक्ति का अपना अपना एक सोचने का थिंकिंग होता है, किस तरीके के बैकग्राउंड से है वो, किस प्रकार से वो कर रहा है, उसके आधार पर व्यक्ति का सोचने समझने का तरीका होता है। और इस मन को भगवान में संलग्न किया जा सकता है, परंतु उसके लिए हमें भगवान के बारे में सोचना होगा, भगवान की सेवा करना होगा, अपने मन को भगवान में लगाना होगा। भगवान गीता में बताते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। चार कार्य करना होगा, अपने मन को भगवान में लगाना, मद भक्त मतलब भगवान की भक्त बनना, मद्याजी मतलब भगवान की सेवा करना, माम नमस्कुरु भगवान को नमस्कार करना। इस तरह से नारद मुनि इंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। ऐसा बोलने के बाद नारद मुनि राजा को आमंत्रित करते हैं, और फिर सिद्ध लोग चले जाते हैं। और राजा प्राचीन वरिष्ठ को इतना ज्यादा वैराग्य आ जाता है कि तुरंत तो अपने मिनिस्टर्स को बुलाते हैं। मिनिस्टर्स को बुला के वो बताते हैं कि अभी आप लोग इस राज्य को संभालिए, और जब मेरे बच्चे आ जाएंगे तो ये राज्य आप उनको दे दीजिएगा। और ऐसा बोल के राजा निकल जाते हैं। राजा ये देख सकते हैं महाराज, ये नारद मुनि का प्रचार कितना स्ट्रांग है। एक स्टोरी सुनाई और राजा ने वैराग्य ले लिया, इतना तीव्र वैराग हुआ कि उसके बच्चे अभी तपस्या करने गए हैं, अभी लौट ही नहीं है, परंतु बच्चों के लौटने के पहले ही राजा प्राचीन वरिष्ठ घर छोड़ के जंगल चले जाते हैं तपस्या करने के लिए। वो गंगा सागर में जाते हैं, गंगा सागर में कपिल आश्रम में जाके राजा प्राचीन वरिष्ठ तपस्या करते हैं, और भक्ति में शुद्धता प्राप्त करने के बाद वो अपने शरीर को त्याग करके भगवत धाम वापस चले जाते हैं। मैत्रेय मुनि बताते हैं कि हे राजा, हे विदुर, जो भी इस पुरंजन की घटना को सुनता है, नारद मुनि ने जिस प्रकार से इसको सुनाया है, उस प्रकार से जो भी व्यक्ति इस घटना को सुनता है और दूसरे लोगों को सुनाता है, वो इस शारीरिक चेतना से मुक्त हो जाएगा और भौतिक भोग से भी मुक्त हो जाएगा। कभी भी उसको भौतिक संसार में अलग अलग स्थानों पर उसको भटकना नहीं पड़ेगा। इस तरह से इसका श्रुति फल है, पुरंजन उपाख्यान जो सुनते हैं, ये जो हमने स्टोरी डिस्कस की, ये जो सुनते हैं और सुनाते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं, वो शारीरिक चेतना से ऊपर जाके भगवत चेतना को प्राप्त करते हैं और संसार से मुक्ति को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे राजा चले गए, ऑलरेडी यहाँ राजा तपस्या के लिए चले गए, परंतु प्रचेतस अभी तक वापस नहीं आए थे। प्रचेतस अभी भी तपस्या कर रहे थे, और प्रचेतस ने तपस्या, भगवान शिव ने उनको आशीर्वाद दिया था, भगवान शिव के आशीर्वाद के बाद प्रचेतस जो है वो भगवान विष्णु को प्रसन्न करने में सफल हुए, और भगवान विष्णु वहां पे 10,000 साल तक इन लोगों ने तपस्या की, भगवान विष्णु वहां पे प्रकट हुए। भगवान विष्णु के रूप को देख के प्रचेतस बहुत संतुष्ट हुए, उनकी जितना भी तपस्या से उनकी जो बॉडी कमजोर हो गई थी, जो भी था वो सब कुछ एकदम पहले सब कुछ सही हो गया। भगवान विष्णु गरुड़ के ऊपर बैठे हुए आए थे, इस प्रकार से लग रहा था जैसे सुमेरु पर्वत के ऊपर कोई बादल हो। गरुड़ को सुमेरु पर्वत बोला गया है, भगवान उसके ऊपर बादल के समान है। भगवान बहुत सुंदर लग रहे थे, उनका चेहरा बहुत सुंदर था, उनके सिर के ऊपर मुकुट, और 8 भुजाओं में भगवान वहां पे आए थे। 8 भुजाओं में भगवान अलग अलग अस्त्र लिए हुए हैं, और अपने शारीरिक शक्ति से वो पूरे संसार पूरे ब्रह्मांड की डार्कनेस को खत्म कर रहे हैं। और जब गरुड़ जो है जब वो अपने पंखों को फड़फड़ाते हैं, तो पंखों के फड़फड़ाने से सामवेद की आवाज आती है। सामवेद के जो मंत्र हैं वो गरुड़ के पंखों के फड़फड़ाने से सामवेद के मंत्रों को उच्चारण होता है। गरुड़ की भक्ति इतनी ज्यादा है कि उनके पंख फड़फड़ाने से वेदों का उच्चारण होता है। पंखों को जब पंखों से उनकी, जैसे सामान्यतः कोई पक्षी होता है गरुड़ पक्षी या चील या गिद्ध, तो पंखों की जोर से आवाज आती है, परंतु गरुड़ के पंख जब हिलते हैं तो सामवेद की आवाज आती है, सामवेद के मंत्र निकल के आते हैं। और भगवान के साथ साथ बहुत सारे देवता लोग आए थे, बहुत सारे ऋषि मुनि भी आए थे। भगवान ने प्रचेतस की तरफ देखा और फिर बहुत सुंदर से बहुत प्रेम के साथ उन्होंने प्रचेतस से वार्तालाप करना चालू किया, और प्रचेतस से वो क्या बोलते हैं कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि आप एक क्रियाकलाप में एक साथ लगे हुए हैं, सभी लोग मिलकर भक्ति कर रहे हैं, तो आप सभी के बीच में संबंध बहुत अच्छा है, ये बहुत जरूरी है। हम सभी भक्त भगवान की भक्ति करते हैं, परंतु यहाँ पे आप देख रहे हैं कि भगवान ने आने के बाद प्रचेतस से ये नहीं बोला है कि मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूँ। सबसे पहले उन्होंने बोला कि आप लोग आपसी सहयोग से अपने आपस में कोऑपरेट करके बहुत अच्छे मित्रता के संबंध से आप भक्ति कर रहे हैं, उससे मैं प्रसन्न हूँ। दैट मीन्स भगवान चाहते हैं कि भक्तों के बीच का संबंध हमेशा बहुत अच्छा होना चाहिए। भगवान भक्तों के बीच का संबंध इतना अच्छा हो, जितना अच्छा होता है भगवान उतना ही प्रसन्न होते हैं, और जितना हम भक्तों के बीच में लड़ाइयाँ होती हैं या संबंध डिस्टर्ब होता है उतना भगवान हमसे नाराज होते हैं, हमें हमारी भक्ति का भी पूरा फल नहीं मिलता है। अगर हम भक्तों को प्रसन्न नहीं कर पा रहे हैं और भक्तों के साथ अच्छा संबंध नहीं रख पा रहे हैं, तो भक्ति का पूरा फल नहीं मिलता है। भगवान विष्णु यहाँ पे क्लियरली बोल रहे हैं कि मैं आपको ये देख के बहुत प्रसन्न हूँ कि किस प्रकार से आप सभी भक्ति में लगे हैं, और बहुत मित्रता के साथ आपसी सहयोग के साथ आप एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, और मैं आपकी मित्रता से इतना प्रसन्न हूँ कि मैं आपको सौभाग्य, सारा सौभाग्य प्रदान करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे कुछ आशीर्वाद मांगे। जो लोग आपको याद करेंगे हर शाम को, प्रचेतस से बोल रहे हैं कि जो भी प्रचेतस को याद करेंगे हर शाम को, वो उसी प्रकार से मित्र, उनके बीच का संबंध उतना ही अच्छा हो जाएगा जितना आपके बीच का संबंध है। भगवान इस प्रकार से आदेश दिया। तो अगर हमें कभी भक्तों से संबंध बनाना मुश्किल हो रहा है, तो ये प्रचेतस को भगवान विष्णु ने जो बात वार्तालाप हुई, इसको अगर हम पढ़ेंगे तो इसको पढ़ के हमें भक्तों से संबंध अच्छा बना सकते हैं। भगवान इसमें बताते हैं कि भक्तों के बीच का संबंध बहुत अच्छा होना चाहिए, और चूंकि प्रचेतस के गुरु भगवान शिव थे, भगवान शिव ने उनको डिलीवर किया था और उनकी प्रार्थनाओं से उन्होंने भगवान विष्णु को प्रसन्न किया था, तो भगवान बता रहे हैं कि जो भी ये भगवान शिव के द्वारा बनाई हुई प्रार्थनाओं को हर सुबह और शाम गाएंगे, उनको मेरा वरदान मिलेगा जिससे वो अपनी इच्छाओं को पूरा कर सके और अच्छी बुद्धि को प्राप्त कर सके। और फिर प्रचेतस को उन्होंने बताया कि चूंकि आपने अपने पिता के आदेशों को पालन किया और उनको बहुत श्रद्धा से उनको स्वीकार किया है, इसलिए आपके जो गुण है पूरे ब्रह्मांड में पूरे संसार में व्याप्त होंगे, और भविष्य में आपका एक बहुत अच्छा पुत्र होगा जो कि भगवान ब्रह्मा के समान ही शक्तिशाली होगा, और बहुत प्रसिद्ध भी होगा, और पूरे पूरे 3 लोकों में उसके उसकी ख्याति फैलेगी। और उसके बाद बताया कि एक एक अप्सरा है प्रमलोचा। प्रमलोचा जो है वो कंडू ऋषि की पुत्री है, और कंडू ऋषि ने उस पुत्री को वृक्षों के हवाले करके वो स्वर्ग में चले गए थे, तो वो कन्या अभी आपको आपसे विवाह करेगी। कैसा क्योंकि एक्चुअली कंडुविसी ने किसी अप्सरा के साथ संघ किया, परंतु फिर अप्सरा ने उनको धोखा दिया। फिर उसके बाद कंडुविसी ने वृक्षों को उनको सुपुर्द करके चले गए थे, और जब छोटा बच्चा छोटी बच्ची जब रोने लगी उसके कारण, भूख के कारण जब छोटी बच्ची रोने लगी, तो सोमदेव ने अपना फिंगर अपनी उंगली उसके मुख में डाल दी। इस तरह से सोमदेव की उंगली से जो अमृत निकलता है वो अमृत उस बच्ची ने पिया, जिसके कारण वो बहुत सुंदर हो गई और बहुत अच्छे अच्छे गुण है। उसका नाम है प्रमलोचा। चूंकि आप सभी बहुत अच्छे भक्त हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप उससे व्यवहार करें, और आपके पिता के आधार पे, पिता ने आपको जो आदेश दिया उसके आधार पे आप इस संसार में प्रोजनी संसार में प्रजनन पैदा करें। और वो जो लड़की जिसको मैं बता रहा हूँ प्रमलोचा, वो आपके लिए बहुत ओबीडियंट रहेगी और वो आपके लिए बहुत आइडियल वाइफ रहेगी। वो इस प्रकार से आप इस संसार में 1 लाख साल तक, नहीं 1 मिलियन, मतलब 10 लाख साल तक आप इस संसार में राज्य कर सकते हैं। उसके बाद आप शुद्ध भक्ति प्राप्त करके भौतिक भौतिक कंटेमिनेशन से मुक्त होकर आप मेरे धाम में आ सकते हैं। ऐसा सुन के प्रचेतस ने भगवान को प्रार्थना की, और भगवान को प्रार्थना करके उन्होंने भगवान को ग्लोरीफाई किया कि भगवान आप संसार में सबसे ज्यादा दयावान हैं, अपनी दया अपनी कृपा के कारण आप अपने भक्तों को सोचते हैं, भक्तों के बारे में सोचते हैं, और केवल आपके सोचने से आपके भक्तों की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। आप सभी के हृदय में भी स्थित हैं, चाहे कोई जीव कितना भी छोटा है आप उसकी सारी इच्छाओं को जानते हैं। और हे भगवान, यद्यपि हम बहुत छोटे हैं, परंतु तब भी आप प्रेम बस हमें हमेशा कृपा करने का प्रयास करते हैं। यद्यपि हम मिस्टेक भी करते हैं, परंतु तब भी आप हमारे ऊपर कृपा करते हैं। इस तरह से प्रचेतस भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, और हम बहुत संतुष्ट हैं कि हमें आपका आश्रय प्राप्त हुआ, और आप भी हमसे संतुष्ट हैं। हमें आपको हम यही आपसे वरदान चाहते हैं कि हम हमेशा ऐसे क्रियाकलाप करें कि आप हमसे संतुष्ट रहें। और फिर प्रचेतस एक और फेमस श्लोक बोलते हैं कि जिस प्रकार से शुद्ध भक्त का संग कुछ समय के लिए मिलने से भी व्यक्ति व्यक्ति का आध्यात्मिक उन्नति बहुत अच्छे से हो जाती है। इस चीज को हमने प्रैक्टिकली फील किया पिछले 2 दिन से, परम पूज्य भक्ति प्रेम स्वामी महाराज यहाँ पे थे, तो प्रैक्टिकली हमने फील किया। आप सभी में जिन्होंने भी उनके लेक्चर सुने और साथ में एसोसिएट किए, तो प्रैक्टिकली उसे पता चलता है कि शुद्ध कृष्णा कॉन्सियसनेस जो है वो कितनी ज्यादा संतुष्टि देने वाली, कितना ब्लिसफुल एक्सपीरियंस होता है अगर कोई व्यक्ति शुद्ध भक्त से मिलता है। तो ऐसे ऐसे भक्तों के संग अगर हमें कुछ समय के लिए भी मिले, कुछ मिनट के लिए भी मिले, तो हम देखते हैं कि हमारी भक्ति में प्रोग्रेस बहुत ज्यादा हो जाती है। कई कई साल तक हम उतनी प्रोग्रेस नहीं कर पाते, परंतु तो अगर कोई शुद्ध भक्त हमसे कुछ मिनट के लिए भी हमारे साथ रहे तो हमारी प्रोग्रेस बहुत हो जाती है। वो यहाँ पे इस श्लोक में बताया जा रहा है कि एक शुद्ध भक्त का कुछ मोमेंट का संग मिलना भी भग ये मुक्ति या स्वर्ग में जाना या भगवान की मुक्ति प्राप्त करना, इससे भी ज्यादा महान माना जाता है। क्योंकि शुद्ध भक्त जो है वो इस संसार को पूरी तरह से शुद्ध कर सकते हैं। जैसे ही बहुत आध्यात्मिक संसार के बारे में डिस्कशन होता है और भगवान की भक्ति के बारे में डिस्कशन होता है, उसी तरह समय लोग अपनी अपनी भूख प्यास को भूल जाते हैं और भौतिक संसार को भूल जाते हैं। और उसके बाद प्रचेतस ने बोला कि चूंकि भगवान शिव का संग हमें मिला कुछ समय के लिए, उस भगवान भगवान शिव का संग मिलने के कारण, भगवान शिव चूंकि आपके शुद्ध भक्त हैं, इसलिए भगवान शिव ने जब हमें आशीर्वाद दिया तो आप हमारे ऊपर प्रकट हुए। और इस तरह से बोल के भगवान को प्रणाम करते हैं, और फिर भगवान उनको आशीर्वाद देते हैं कि आपने आपके मन में जो भी इच्छाएं हैं सारी इच्छाएं पूरी होंगी, और भगवान वहां से चले जाते हैं। उसके बाद जब प्रचेतस बाहर आते हैं तो देखते हैं कि किस प्रकार से पूरे संसार में वृक्ष बढ़ गए हैं बहुत सारे। इसके पीछे हमने देखा था राजा प्राचीन बड़ी से जंगल जा चुके हैं और प्रचेतस अभी वापस आ रहे हैं, तो उन्होंने देखा कि किस प्रकार से पेड़ बहुत बड़े हो चुके हैं, और इतने बड़े पेड़ हो चुके हैं कि वो स्वर्ग में जाने का रास्ता रोक रहे हैं। तो प्रचेतस बहुत नाराज होते हैं, क्योंकि राजा के चले जाने से संसार का जो कंडीशन था वो थोड़ा नेग्लेक्ट जैसा हो रहा था। इस कारण से प्रचेतस को गुस्सा आता है, और प्रचेतस गुस्सा में सारे वृक्षों को खत्म करने का प्रयास करते हैं, परंतु जब ब्रह्मा जी देखते हैं कि प्रचेतस वृक्षों को किस प्रकार से खत्म कर रहे हैं, तो तुरंत वो वहां पे आते हैं और ब्रह्मा जी उनको बताते हैं कि इस प्रकार से सभी वृक्षों को विनाश करना अच्छा नहीं है। और ब्रह्मा जी के आदेश के कारण वो वृक्षों को खत्म करना बंद कर देते हैं, और जितने वृक्ष बचे रहते हैं वो अपनी पुत्री मारीसा, उनकी जो पुत्री मारीसा है वो इनसे विवाह, दक्ष के साथ, प्रचेतस के साथ उनका विवाह होता है। तो प्रमलोचा और मारीसा दो से उनका विवाह होता है, और फिर मारीसा के गर्भ से ब्रह्मा के पुत्र का, ब्रह्मा के पुत्र जो दक्ष थे, जो कि ओरिजिनली हमने देखा था भगवान शिव ने उनको मार दिया था, फिर उनके सिर पे बकरे का सिर लगाया गया था, वो दक्ष फिर से जन्म लेते हैं प्रचेतस के पुत्र के रूप में। तो पहले दक्ष ब्राह्मण थे, इस बार वो क्षत्रिय वर्ण में जन्म लेते हैं क्योंकि उन्होंने भगवान शिव को ऑफेंड किया था। भगवान उनको फिर से प्रजापति बना देते हैं छठवें मन्वंतर के अंदर। तो पहले मन्वंतर में वो स्वयंभू मन्वंतर जो था उसमें दक्ष और भगवान शिव के बीच में लड़ाई हुई थी, उसके कारण से दक्ष की मृत्यु हो गई थी, फिर दक्ष को बकरे का सिर मिला था, और उसके बाद फिर भगवान ने छठवें मन्वंतर में फिर से दक्ष को जन्म दिया, और पूरा एक मन्वंतर दक्ष ने तपस्या किया था, दक्ष यज्ञ रैवत मन्वंतर दक्ष ने पूरा तपस्या किया था, और चक्षुष मन्वंतर में उनको फिर से प्रजापति बन गए थे। इस तरह से प्रचेतस बाहर वापस लौटते हैं और फिर धरती पे 10 लाख साल तक राज्य करते हैं, और भगवान की ब्लेसिंग के कारण उनको, भगवान की ब्लेसिंग के कारण वो 10 लाख साल तक राज्य करते हैं। उसके बाद जब वो वृद्धावस्था को प्राप्त होते हैं तो वो अपने पुत्र दक्ष को राज्य प्रदान करके चले जाते हैं, जंगल की तरफ चले जाते हैं, और 10 प्रचेतस फिर समुद्र के किनारे जाते हैं, वहां पे एक ऋषि से मिलते हैं, और वहां पे वो मिस्टिक योग, दिव्य योग को प्राप्त करते हैं, और कृष्ण भक्ति को पूरा प्राप्त करके नारद मुनि का दर्शन उनको प्राप्त होता है। नारद मुनि एक बार उनसे मिलने आते हैं दक्ष से, जब वो तपस्या करते रहते हैं, तो नारद मुनि से मिलने के कारण वो बताते हैं कि हमारा बहुत सौभाग्य है कि हमने आपको देखा। जिस प्रकार से जब सूर्य का उदय होता है तो लोग अंधेरे अंधेरे से जो लोग डरते रहते हैं वो, उनका हृदय एकदम शांत हो जाता है सूर्य सूर्य को देख के, उसी प्रकार से आप जो हमारे सामने आए हैं तो आपको देख के हमारे हृदय की जो अज्ञानता है वो खत्म हो चुकी है। नारद मुनि से दक्ष इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं, नहीं प्रचेतस प्रार्थना करते हैं, और फिर बोलते हैं कि हम तो भौतिक संसार में ही डूबे हुए हैं, भगवान शिव और भगवान विष्णु ने हमें जो इंस्ट्रक्शन दिए थे वो इंस्ट्रक्शन तो हम भूल चुके हैं, इसलिए हमारे ऊपर फिर से कृपा करिए और हमें दिव्य ज्ञान प्रदान करिए। और फिर नारद मुनि उनको फिर से शिक्षा देते हैं, एक प्रोमिनेंट शिक्षा है, नारद मुनि बताते हैं कि हर व्यक्ति के 3 जन्म होते हैं, 3 प्रकार से उनका जन्म होता है। पहला जन्म होता है माता पिता के द्वारा, पिता के वीर के द्वारा जन्म होता है, उसको बोले जाते हैं सौक्र जन्म। दूसरा जन्म होता है दीक्षा गुरु जब हमें दीक्षा प्रदान करते हैं, उसको बोला जाता है सावित्र जन्म, और तीसरा होता है जब हमें ब्राह्मण दीक्षा प्रदान की जाती है, वो कहलाता है याज्ञिक याज्ञिक जन्म। तो पहला सौक्र जन्म, दूसरा सावित्र जन्म, तीसरा याज्ञिक जन्म, और 3 बार इस प्रकार से अगर किसी को अपॉर्चुनिटी मिलती है सेकंड इनिशिएशन तक पहुंचने की, उसके बाद भी अगर वो भगवान की सेवा में नहीं लगता है तो उसके सारे कर्म यूजलेस कहलाते हैं, क्योंकि भक्ति के बिना, भगवान को संतुष्ट किए बिना तपस्या का कोई मतलब नहीं है, ज्ञान का भी कोई मतलब नहीं है, सारी की सारी दिव्य अभ्यास यूजलेस है अगर उससे हमें भगवान की प्राप्ति नहीं हो सके। जिस प्रकार से ये एक फेमस श्लोक इसमें आता है, यथा तरो मूल निषेचन तप्यंत तृप्यंति तत्स्कंद भुजो पसाखा, हमने कई बार सुना है ये एग्जाम्पल प्रभुपाद जी देते थे कि जैसे पेड़ की जड़ में पानी डालने से पेड़ की पत्तियां संतुष्ट हो जाती हैं, और पेट में भोजन देने से शरीर संतुष्ट हो जाता है, ये वाला श्लोक एक्चुअली में यहाँ पे आता है 4थे स्कंद में 31वें अध्याय में, प्रचेतस लोगों को नारद मुनि ये इंस्ट्रक्शन देते हैं कि इस संसार में सब कुछ खत्म हो जाता है, संसार संसार को भगवान एंड कर देते हैं, परंतु भगवान हमेशा उपस्थित रहते हैं। संसार के बड़े बड़े देवी देवता जो हैं वो सभी समय के प्रभाव में सब खत्म हो जाते हैं, केवल भगवान उपस्थित रहते हैं। और इस प्रकार से इंस्ट्रक्शन देके नारद मुनि बोलते हैं कि हे राजकुमार, अभी आप भगवान की शुद्ध भक्ति में लग जाइए और सभी जीवों पे कृपा करिए, हमेशा संतुष्ट रहिए, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करिए। भक्त का एक कर्तव्य है कि सभी जीवों के प्रति मित्रता रखें और अपनी इंद्रियों को संतुष्ट, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करें, सभी के मित्र के समान रहे और हमेशा संतुष्ट रहे। अगर कोई इस प्रकार से करता है तो वो भगवान को बहुत जल्दी प्रसन्न कर सकता है। इस प्रकार से बता के नारद मुनि ब्रह्मलोक चले जाते हैं, और नारद मुनि से सुन के सारे जो राजकुमार हैं वो भगवान से पूरी तरह से अटैच हो जाते हैं और फाइनली अपने आप को भगवान के ध्यान में लगा के प्रचेतस जीवन का अंतिम लक्ष्य प्राप्त करते हैं। और सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से बता रहे हैं कि अभी मैंने स्वयंभू मुनु के पहले पुत्र जो कि उत्तानपाद है उनका पूरा वंश बता दिया, अभी मैं आपको बताऊंगा स्वयंभू मुनु के दूसरे पुत्र राजा प्रियव्रत उनका वंश में डिस्क्राइब करूंगा। और ये सब टॉपिक सुन के, ये टॉपिक एक्चुअली आप देखें सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं, और वही टॉपिक सुत गोस्वामी सौनक आदि ऋषि को बता रहे हैं, और वही टॉपिक मैत्रेय मुनि विदुर को बता रहे हैं। तो अब यहाँ पे विदुर ने जब मैत्रेय मुनि से ये सब कुछ सुना तो विदुर पूरी तरह से शुद्ध भक्ति में डूब गए, तो उनकी आंखों से आंसू आए, उन्होंने मैत्रेय मुनि को प्रणाम किया और उनसे बोला कि आप आपकी कृपा से आपने मुझे इस संसार से बाहर जाने का रास्ता बताया है। और अपने प्रणाम करने के बाद विदुर ने उनसे परमिशन लिया और फिर हस्तिनापुर की तरफ चले गए। तो यहाँ पे विदुर मैत्रेय संवाद खत्म हो जाता है चौथे स्कंद में, और इसके बाद पांचवा स्कंद जो है राजा प्रियव्रत वो हम कल स्टार्ट करेंगे। पांचवें स्कंद में बहुत महान महान राजाओं का डिस्क्रिप्शन है, प्रियव्रत हैं, राजा भरत हैं, ऋषभ देव हैं, बहुत सारे, और साथ साथ पूरे संसार के पूरे ब्रह्मांड का डिस्क्रिप्शन है इस कैंटो में। तो कल से हम पांचवा स्कंद स्टार्ट करेंगे। अगर किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं जो आज के टॉपिक से संबंधित। कल हम फिफ्थ कैंटो से, फिफ्थ कैंटो फर्स्ट चैप्टर पहले अध्याय से स्टार्ट करेंगे।
हरे कृष्ण प्रभु जी।
यस, प्रदीप प्रभु ने हाथ उठाया था, बताइए प्रदीप प्रभु। प्रदीप राजपूत प्रभु अपने आप को अनम्यूट करके।
आप
आपकी आवाज साफ नहीं आ रही प्रभु जी। प्रदीप प्रभु आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप चाहे तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं अगर आपका सिग्नल उतना नहीं।
सुन पा
प्रभु जी आप ऐसा करिए चैट बॉक्स में लिख दीजिए, आपका सिग्नल शायद वीक है, चैट बॉक्स में प्रश्न लिख सकते हैं, आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही हमें।
हेलो।
हरे कृष्णा। ओके, अच्छा निकुंज पे आप पूछ सकते हैं, आपका हाथ उठा हुआ है ना, अनम्यूट करके
हाँ,
पूछ।
हरे कृष्ण प्रभु जी।
यस प्रभु।
मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे जो शास्त्रों में जो भी कथाएं होती है उसके बाद लास्ट में से डिस्क्रिप्शन दिया जाता है कि अगर ये सुनने से हमको ये फल प्राप्त होता है या फिर हम मुक्त हो जाते हैं, पर हम राइट नाउ अगर हम जब सुनते हैं पर ऐसा हो नहीं पाता है, पर तो एक्चुअली उनका कहने का मतलब क्या होता है वो भी मुझे क्लियर नहीं है, थोड़ा डाउट है। मतलब किस प्रकार से हम मुक्त होते हैं उनके रिगार्डिंग।
ये सब क्वालिफायर होता है, जैसे आप देखें आपने वो सुना होगा ना, कोई भी आप साबुन आबुन देखें या कोई ऑफर आता है तो उसमें पीछे लिखा रहता है टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। सो देखा है आपने,
हाँ, प्रभु
कोई
जी।
भी ऑफर आता है तो उसमें लिखा रहता है टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, कंडीशंस अप्लाई हर जगह लिखा रहता है। तो इसी तरह से ये जो
हाँ
निर्देश है इसमें कंडीशन है कि हमारी श्रद्धा कितनी है, जितनी श्रद्धा होती है उतना फल मिलता है। अगर कोई 100% श्रद्धा से सुनता है तो वो नेचुरली प्रैक्टिस भी करेगा
ओके प्रभु जी, समझ गया।
तो फिर वो मुक्त
थैंक
होगा।
यू।
अगर कहीं केवल सुनने के लिए सुना कान से और प्रैक्टिस नहीं किया तो फिर वो नहीं होगा, तो श्रद्धा की आवश्यकता है उसके लिए।
ओके प्रभु जी, थैंक यू।
ओके, और कोई प्रश्न है? प्रदीप प्रभु आपका सिग्नल अगर ठीक हो तो पूछ सकते हैं। अच्छा ओके ठीक है, तो कल मिलते हैं, पांचवा स्कंध हम डिस्कस करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।